يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مصباح الدجى یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے عقائد تیسرا چیپٹر, اس کا آج پہلا لیکچر ہے, قرآن اور آسمانی کتابیں. آسمانی کتابوں کے نزول کا فلسفہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے متعدد آسمانی کتابیں نازل کی ہیں, جن میں صحف ابراہیم, صحف نو, تورات, انجیل اور سب سے جامع ترین کتاب قرآن مجید شامل ہیں. اگر یہ کتابیں نازل نہ ہوتیں تو انسان خدا شناسی اور خدا کی عبادت کے راستے میں غلطی کا شکار ہو جاتا, اور وہ تقویٰ, تربیت اور اخلاق کے اصولوں اور ان اجتماعی قوانین سے دور ہو جاتا جن کی اسے ضرورت تھی. یہ آسمانی کتابیں باران رحمت کی طرح, رحمت کی بارش کی طرح دلوں پر نازل ہوئیں. ان کتابوں نے انسان کی فطرت میں تقوی, اخلاق, معرفت اللہ, اللہ کی معرفت اور علم و حکمت کے بیج بوئے اور ان کو پروان چڑھایا. ارشاد رب العزت ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنین کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اور ان کے ساتھ مومنین بھی ایمان لائے, سب کے سب خدا پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. سورہ بقرہ. افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیز جاہل اور نااہل لوگوں کی مداخلت سے بہت سی آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی ہیں, یعنی ان میں چینج آ گئی ہے یا چینج کر لی گئی ہیں بہت سی چیزیں ان میں, اور ان میں غلط نظریات کا اضافہ کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا ہے. یہ تمام زمانوں اور ادوار میں آفتاب کی طرح روشنی پھیلاتا آیا ہے اور دلوں کو منور کر رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکے ہیں. اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی اور سعادت کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہوں. سورہ مائدہ. خود اسمائی کر لیتے ہیں. سورہ مائدہ کی ان دو آیات, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام کی روشنی میں بتائیں کہ خدا کن لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. چار آپشن دے رہا ہوں, درست پر آپ نے نشان لگانا ہے. پہلا ہے گمراہوں کو, دوسرا کافروں کو, تیسرا منافقوں کو, اور چوتھا جو خوشنودی کے طالب ہوں. اگلا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم معجزہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم معجزہ ہے. یہ نہ فقط فصاحت و بلاغت, بیان کی چاشنی اور معنی کی جامعیت کے لحاظ سے معجزہ ہے, بلکہ دیگر کئی جہاز سے بھی اس میں اعجاز پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اس کی مثل, بلکہ اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بھی نہیں لا سکتا. جو لوگ اس کتاب میں شک کرتے ہیں कुरान ने उन्हें कई मर्तबा इस बात की दावत दी है, लेकिन वो उसके मुकाबले पर हरगिज कादर ना हुए। अरशाद रब्बुल इज्जत है, कुल लाइनिस्तमातिल इंसु वल जिन अला अन यातु बिमिस्ले हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्ले ही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। अगर जिन्नो इंस मिलकर इस कुरान जैसी किताब लाना चाहें तो नहीं ला सकेंगे, अगरचे इस काम में वो एक दूसरे की मदद करें। सूरह बनी इसराइल। एक और जगह अरशाद होता है, वाइन कुंतुम फी रहबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरते में मिसले वदउ शोदा अकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और अगर उसमें तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर नाजिल किया है, तो कम अज कम इस जैसी एक सूरत ले आओ और खुदा के सिवा अपने गवाहों को इस काम के लिए बुला लो अगर तुम सच्चे हो। सूरह बकरा। हम यह अकीदा रखते हैं कि जमाना गुजरने के साथ साथ न फकत ये कुरान पुराना नहीं हुआ, बल्कि इसके एजाज आमेज नकात मजीद आश्कार हो रहे हैं, वाजे हो रहे हैं, और दुनिया वालों के सामने उसके मुतालिब की असमत मजीद रोशन हो रही है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी एक हदीस में मजकूर है, अल्लाह ने कुरान को किसी खास जमाने या कुछ खास लोगों के लिए मुख्तस नहीं किया, इसी वजह से वो हर जमाने में नया और हर ग्रोह के नज़दीक क्यामत तक शादाब है। बिहारुल अनवार। खुद असमाई कर लेते हैं, रसूलुल्लाह का सबसे अहम मोजज़ा क्या है? चांद के दो टुकड़े करना, संगरेजों का हथेली पर कलिमा पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का साया ना होना, और चौथा ऑप्शन है कुरान मजीद। इनमें सबसे अहम मोजज़ा जो है वो आपने बताना है, उस पर निशान लगाना है। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबाहुद्दुजा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे अकायद तीसरा चैप्टर, उसका ये दूसरा लेक्चर है, कुरान और आसमानी किताबें। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है अदम तारीफ। कुरान मजीद में तारीफ नहीं है। हमारा अकीदा है कि आज दुनिया के मुसलमानों के पास जो कुरान है ये वही कुरान है जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर नाजिल हुआ था। ना उसमें कुछ कमी वाक़ हुई है और ना उसमें किसी चीज़ का इजाफा किया गया है। इब्तदाई दिनों से ही कातबान वही की एक बड़ी जमात नुजूल कुरान के बाद आयात को लिख लेती थी। मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि वो दिन रात उसकी तलावत करें, अपनी पंचगाना नमाजों में उसे दोहराएं। बहुत से लोगों ने कुरान को हिफ्ज कर लिया। इस्लामी माशरों में कुरान के हुफाज और कारियों को हमेशा खसूसी मकाम हासिल रहा है। इन बातों और दीगर वजूहात के बायस कुरान हर किस्म के तगैर तबदल और तहरीफ से महफूज रहा। इसके अलावा खुदा ने दुनिया के खात्मे तक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। खुदा की इस जमानत के बायस इसमें तगैर तहरीफ महाल है। अरशाद रब्बुल इज्जत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हमने कुरान नाजिल किया है और यकीनी तौर पर हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। सूरह हिज्र। तमाम बड़े बड़े शिया सुन्नी उलमा और मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान में किसी किस्म की तारीफ नहीं हुई। फ्रीकैन में से बहुत कम लोगों ने बाज़ अहादीस की रूह से तारीफ की बात की है, लेकिन فریقین کے محقق حضرات اس رائے کو یقینی طور پر ٹھکراتے ہیں اور مذکورہ روایات کو من گھڑت قرار دیتے ہیں، یا ان کو تحریف معنوی، آیات قرآن کی غلط تفسیر، یا تفسیر قرآن اور متر قرآن میں خلط یعنی آمیزش پر محلول کرتے ہیں۔ جو تنگ نظر لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بعض شیعہ یا غیر شیعہ لوگ تحریف کے قائل ہیں، حالانکہ یہ بات شیعہ اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کے سری بیانات کے بالکل برعکس ہے، ایسے لوگ اپنی ناسمجھی سے قرآن کو زخ پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اپنے بے جا تعصب کی وجہ سے اس عظیم آسمانی کتاب کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے قرآن کی بے تدریج جمع آوری کا تاریخی مطالعہ، اس کتاب کو لکھنے، حفظ کرنے اور اپنے پاس رکھنے پر مسلمانوں کی زبردست توجہ، بالخصوص پہلے دن سے ہی کاتبان وحی کی ایک تعداد کا وجود، اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ قرآن میں تحریف ایک ناممکن بات رہی ہے۔ نیز اس معروف قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن بھی موجود نہیں ہے، اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے اور تحقیق کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، کیونکہ آج تمام گھروں، تمام مساجد اور ملک کی تمام لائبریریوں میں قرآن موجود ہے، یہاں تک کہ صدیوں پہلے لکھے گئے قلمی نسخے ہمارے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ سب بے بانگے دہل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو باقی اسلامی ممالک میں موجود ہے۔ اگر اس سے پہلے ان مسائل پر تحقیق کے وسائل فراہم نہ تھے تو آج تو تحقیق کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تھوڑی سی تحقیق سے ہی اس طرح کی غلط نسبتوں کا بے بنیاد ہونا ثابت ہو جائے گا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ زمر۔ ہمارے ہاں دینی علوم کے مراکز میں آج بڑے وسیع پیمانے پر قرآن علوم کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا ایک بہت ہی اہم موضوع قرآن میں تحریف اور تبدیلی کا نہ ہونا ہے۔ خود آزمائی کر لیتے ہیں۔ سورہ ہجر آیت 9 کی روشنی میں بتائیں کس ہستی کی ضمانت کے باعث قرآن میں تغیر و تحریف محال ہے۔ چار آپشن آپ کو دے رہا ہوں: صحابہ کرام، اہل بیت علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ۔ ان چاروں میں سے جو آپشن آپ کے نزدیک درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک انسان کی مادی و معنوی ضروریات اور قرآن۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کی معنوی اور مادی زندگی کے لیے، انسان کی روحانی زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے ضروری بنیادی اصول قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں حکومت اور سیاسی معاملات کو چلانے، دوسرے معاشروں سے تعلقات، باہمی زندگی، صلح و جنگ اور عدالتی و اقتصادی مسائل وغیرہ کے بنیادی اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان پر عمل درآمد سے ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی جو چیزوں کو بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ سورہ نحل۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام ہرگز حکومت اور سیاست سے جدا نہیں ہے۔ اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی حکومت خود چلائیں اور اس کے ذریعے اسلامی اقدار کو زندہ کرے और इस्लामी मुआशरा की तरबियत इस तरह करें कि सब लोग अदलो इंसाफ के रास्ते पर गामसन हो जाएं, यहां तक कि दोस्त और दुश्मन के मामले में भी अदालत से काम लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलकिस्त शुहदा अलिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक्रबीन। ऐ ईमान लाने वालों, मुकम्मल तौर पर अदालत कायम करो और खुदा के लिए गवाही दो, अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारे या वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए नुकसानदेह हो। सूरह निसा। वला यजरिमन्नकुम शनाआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू एतेलू हुवा अक्रबु लित्तक्वा। किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हारे गुनाह करने और अदल का दामन छोड़ देने का बायस हरगिज न बनने पाए। अदल से काम लो कि ये तकवा और परहेजगारी के नजदीक है। सूरह मायदा। खुद असमाई कर लेते हैं। सूरह निसा आयत 135 के मुताबिक अल्लाह मोमिनीन से किस अहम जिम्मेदारी का तकाजा कर रहा है कि तुम जरूर बचा लाओ, अगरचे ये खुद तुम्हारे लिए या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए नुकसानदेह हो। चार ऑप्शन आपको दे रहा हूं। गैर मुसलमों को कलमा पढ़ाना, ये जिम्मेदारी है। लोगों को कुरान की तालीम देना, हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहना, मुकम्मल तौर पर अदालत कायम करना। इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिसबाहुद्दुजाज यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे अकायद तीसरा चैप्टर कुरान और आसमानी किताबें, इस सिलसिले का आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हम बात कर रहे हैं कुरान मजीद की तलावत, उस पर तदब्बुर और उस पर अमल करने के हवाले से। हमारा अकीदा है कि कुरान की तलावत बेहतरीन इबादतों में से एक है। बहुत कम इबादतें उसके हम पल्ला हैं, क्योंकि ये कुरान के बारे में गौर व फिक्र करने, तदब्बुर करने और नेक आमाल का सरचश्मा है। कुरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहता है, कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फाहु अविन कुस मिनहु कलीलन। रात को उठो मगर पूरी रात नहीं, आधी रात या उससे भी कुछ कम कर दो। औजिद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीलन, या कुछ ज्यादा कर दो और कुरान को ठहर ठहर कर बाकायदा पढ़ो। सूरह मुसम्मिल। फकराउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, बस जिस कदर मुमकिन हो कुरान की तलावत करो। सूरह मुसम्मिल। लेकिन जिस तरह बयान किया गया, तलावत कुरान उसके मानी और मतालिब में तदब्बुर और तफक्कुर का जरिया हो, और ये तफक्कुर और तदब्बुर भी कुरान पर अमल का मुकदमा बने। अफला या तदब्बरून अल कुराना अम अला कलूबिन अकफालुहा। क्या वो कुरान में तदब्बुर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। सूरह मुहम्मद। वाला का दिया सर नल कुरान अले सिकरे फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बनाया, तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। सूरह कमर। एक और जगह अर्शाद होता है, हाज किताबुन अनजल नाहु मुबारकुन। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आप पर नाजिल किया है, फत्ताबेउहू, लिहाजा उसकी पैरवी करो। सूरह अनाम। लिहाजा वो लोग जो फकत कुरान की तलावत और उसे हिफ्ज करने पर इक्तफा करते हैं, नीज कुरान में तदब्बुर और इसके मुताबिक अमल से महरूम रहते हैं, अगरचे वो उन तीन अरकान में से एक रुकन को अंजाम देते हैं, लेकिन दो अहम अरकान से हाथ दो बैठते हैं, वो जबरदस्त खसारे में हैं। खुद आजमाई कर लेते हैं। जो लोग फकत कुरान की तलावत और उसे हिफ्ज करने पर इक्तफा करते हैं, नीज उसमें तदब्बुर और उसके मुताबिक अमल करने से महरूम रहते हैं, आपकी नज़र में उनके लिए क्या हुक्म है? वो अजीम लोग हैं पहला ऑप्शन, वो कमज़ोर लोग हैं, वो गुमराह हो चुके हैं, वो ज़बरदस्त खसारे में हैं। ठीक पर आपने निशान लगाना है। अगला हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, गुमराह कुन मबाहिस। हमारा अकीदा है कि मुसलमानों को आयात कुरानी में तदब्बुर से रोकने के लिए हमेशा खुफिया हाथ काम करते रहे हैं। बनो उमैया और बनो अब्बास के दौर में कुरान की कदीम या हादिस होने को मसला छेड़कर मुसलमानों को दो ग्रोहों में तकसीम किया गया और उनको लड़ाया गया, जिसके नतीजे में बहुत सी जानें जाया हो गईं। हालांकि अब हम जानते हैं कि ये मौजूआत इख्तलाफ और नज़ा के काबिल नहीं हैं, झगड़ने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि अगर कलामुल्ला से मुराद हरूफ नकूश किताबत और कागज़ हो तो किसी शक के बगैर ये सब हादिस अमूर हैं, और अगर उससे मुराद इल्मे परवरदिगार में मौजूदा मानी हो तो चूंकि खुदा का इल्म उसकी ज़ात की तरह कदीम और अजली है, लिहाजा ये भी अजली है। लेकिन जाबर हुक्मरानों और जालिम खुलफा ने लोगों को साल हसाल इस मसले में मशगूल रखा। अब कुछ और खुफिया हाथ मुसलमानों को दूसरे तरीकों से कुरान में तदब्बुर और उस पर अमल करने से रोक रहे हैं। खुद आजमाई कर लेते हैं। अगर कलामुल्ला से मुराद हरूफ नकूश किताबत और कागज लिए जाएं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? पहला ऑप्शन है कदीम, हादिस, जलाल, जमाल। इन चारों ऑप्शन में से आपकी नजर में जो दुरुस्त है उस पर आपने निशान लगाना है। एक और खुद आजमाई कर लेते हैं। अगर कलामुल्ला से मुराद इल्मे परवरदिगार में मौजूद मानी हो तो उसके बारे में क्या हुक्म है? पहला ऑप्शन है कलाम बनता है कलाम करने से, इसलिए हादिस है। खुदा का इल्म उसकी ज़ात की तरह कदीम और असली है, लिहाजा ये भी कदीम और असली है। ये कुरान जलाल ही जलाल है, कमाल ही कमाल है। इसमें से जो भी ऑप्शन आपके नज़दीक दुरुस्त है उस पर निशान लगाना है। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबाहुद्दुजा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे अकायद तीसरा चैप्टर कुरान और आसमानी किताबें, उस सिलसिले का आज ही हमारा चौथा लेक्चर है। आज हमारा मौजू है तफसीर कुरान के असूल व ज़वाबित। हमारा अकीदा है कि कुरानी अल्फाज के उर्फी और लुगवी मानी पर अमल करना चाहिए, मगर ये कि आयात के अंदर या बाहर कोई अकली या नकली करीना हो जो किसी दूसरे माना पर दलालत करे। अगर कोई अकली करीना यानी अकली मुनासबत मौजूद है तो फिर वो माना लिया जाएगा, हम लुगवी माना नहीं करेंगे। इस तरह नकल, नकली से मुराद जो तहरीरी हो, लेकिन मशकूक शवाहद का सहारा लेने से परहेज किया जाए और गुमानो जन के ज़रिए कुरानी आयात की तफसीर न की जाए। मसलन कुरान जब ये कहता है वमन काना फी हाज़ी आमा फाहुवा फिल आखिरत आमा, जो इस दुनिया में नाबीना होगा वो आखिरत में भी नाबीना होगा, सूरह बनी इसराइल। हमें यकीन है कि यहाँ आमा से मुराद वो ज़ाहरी नाबीना नहीं है जो आमा का लुगवी माना है, क्योंकि बहुत से नेक और पाक लोग ज़ाहरी तौर पर नाबीना और अंधे थे, लेकिन उससे मुराद बातनी अंधापन और नाबेनाई है। यहाँ पर अकली करीना इस तफसीर का बाइस बना है। اسی طرح قرآن بعض اسلام دشمن لوگوں کے متعلق کہتا ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، وہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں اسی وجہ سے کوئی بات نہیں سمجھتے، سورہ بقرہ۔ یہ بات واضح ہے کہ ظاہری طور پر بہرے گنگے اور اندھے نہیں تھے بلکہ یہ ان کی باطنی صفات تھیں۔ ہم نے یہ تفسیر قرائن حالیہ کی وجہ سے کی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرینہ کی جمع ہے قرائن، مناسبت۔ اسی بنا پر قرآن جب خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، یعنی خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، سورہ مائدہ۔ خدا مزید فرماتا ہے وسنا الفلک بآیوننا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، سورہ ہود۔ تو ان آیات کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ خدا جسمانی اعضاء مثلا کان آنکھ اور ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ ہر جسم اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور زمان و مکان اور جہت کا محتاج ہوتا ہے اور آخرکار فنا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خدا ان صفات سے منزہ ہے، پاک ہے۔ لہذا یدا ہو، اس کے دونوں ہاتھ سے مراد خدا کی وہی قدرت کاملہ ہے جس نے کائنات کو اپنے قبضے میں لیے رکھا ہے، اور آیون آنکھوں سے مراد تمام چیزوں کے بارے میں اس کا علم ہے۔ لہذا ہم ان الفا یدا ہو آیون، خواہ خدا کی صفات کے متعلق ہوں یا کچھ اور ہوں، سے چمٹ کر عقلی اور نقلی قرائن سے چشم پوشی کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ دنیا کے تمام سخنوروں کی روش یہی ہے، تمام بات کرنے والوں کی روش یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ وہ اس طرح کے قرائن کا سہارا لیتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی اس روش کی تائید کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا ہے، سورہ ابراہیم۔ لیکن جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ ان قرائن کا قطعی اور واضح ہونا ضروری ہے۔ خود اسمائی کر لیتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى کی تفسیر کس اصول کے تحت کی جائے گی؟ لغوی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے، نقلی قرینہ کے باعث، عقلی قرینہ کے باعث، ان میں سے جو درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ ایک اور خود اسمائی دے رہا ہوں، قرآن بعض دشمن لوگوں کے متعلق کہتا ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون۔ اس آیت کی تفسیر کس بنا پر کی جائے گی؟ لغوی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، نقلی قرائن کی وجہ سے، حالیہ قرائن کی وجہ سے؟ ایک اور خود اسمائی ہے خدا کے بارے میں قرآن کے الفاظ بل یداہ مبسوطتان، اس آیت کی تفسیر کس اصول کے تحت کی جائے گی؟ لغوی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے، نقلی قرینہ کے باعث یا عقلی قرینہ کے باعث؟ اگلا ہمارا ٹاپک ہے تفسیر بالرائے کے خطرات۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تفسیر بالرائے قرآن مجید کے خلاف ایک انتہائی خطرناک منصوبہ ہے۔ احادیث میں اس کا شمار گناہانِ کبیرہ میں کیا گیا ہے، یہ خدا کی بارگاہ سے دھتکارے جانے کا سبب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا فرماتا ہے ما آمن بی من فسر برائیہ کلامی، جو شخص میرے کلام کی تفسیر اپنی رائے سے کر دے وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، وسائل الشیعہ۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر ایمان لا چکا ہوتا تو کلام خدا کو اس طرح قبول کرتا جس طرح کہ وہ ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح اس کی مرضی اور خواہش ہو۔ बहुत सी मशहूर किताबों, मसलन सही तिर्मिज़ी, नसाई, अबू दाऊद वगैरह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आई है, मन काला फिल कुरआन बि रायही औ बिमा ला यालमो, जो कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से करे या उसके मुतल्लिक बगैर इल्म के कोई बात कहे, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तफसीर बिर राय से मुराद ये है कि आदमी अपने जाती रोजानात और फर्दी या ग्रोही अकीदे के मुताबिक कुरान का माना करे और कुरान को उन पर मुंतबिक करे, बगैर इसके कि उस मतलब पर कोई करीना या शाहिद मौजूद हो। ऐसा शख्स हकीकत में कुरान का ताबे नहीं है, बल्कि कुरान को अपना ताबे बनाना चाहता है। अगर वो कुरान पर मुकम्मल ईमान रखता तो इस तरह का काम हरगिज न करता। अगर कुरान के सिलसिले में तफसीर बिर राय का दरवाज़ा खुल जाए तो ये बात यकीनी है कि कुरान मजीद का एतबार उठ जाएगा और हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक उसका माना करेगा और हर बातिल अकीदे को कुरान पर मुंतबिक करेगा, बगैर इसके कि इस मतलब पर कोई करीना या शाहिद मौजूद हो। लिहाजा तफसीर बिर राय से मुराद लुगवी मानी अदबियात अरब और फहमे अहले जबान के मयारों के खिलाफ कुरान की तफसीर करना और इसको अपने बातिल ख्यालात और जाती ख्वाहिशात पर मुंतबिक करना, यह हकीकत में कुरान की मानवी तहरीफ है। तफसीर बिर राय की मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनमें से एक कुरानी आयात के मुतल्लिक इंतखाबी रवैया अपनाना है। वो यूं कि बतौर मिसाल शफाअत, तौहीद और इमामत जैसे मौजूआत में से सिर्फ उन आयात के पीछे जाए जो पहले से तयशुदा अकीदे के मुताबिक हो और उन आयात से जो उसके अफकार और नजरियात से हम आहंग नहीं लेकिन दूसरी आयात की तफसीर कर सकती हैं, चश्म पोशी करे या उन पर तवज्जो ही न दे। मुख्तसर ये कि जिस तरह कुरान मजीद के जाहरी अल्फाज से चिमट कर मोतबर अकली और नकली कराइन को नजरअंदाज कर देना एक तरह का इनहराफ है, इसी तरह तफसीर बिर राय भी एक इनहराफ है। ये दोनों चीजें कुरान की अजीम तालीमात और उसके अकदार से दूरी का बायस बनती हैं। खुद आजमाई कर लेते हैं, अहादीस में तफसीर बिर राय का शुमार किसमें किया गया है? चार ऑप्शन दे रहा हूं। एक दुरुस्त है, सगीरा गुनाहों में, कबीरा गुनाहों में, कुरान की आम फहम तफसीर में, जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तफसीर में। एक और खुद आजमाई है, हदीस के ये अल्फाज मा आमन अभी मन फसरा बे राय ही कलामी शिया की किस मोतबर किताब से लिए गए हैं? अल काफी, नाहचुल बलागा, वसाइलो शिया, अल इस्तबसार। एक और खुद आजमाई है, अहले सुन्नत की मोतबर कुतब जैसे सही तिर्मिज़ी, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद वगैरह में इस हदीस मन काला फिल कुरान बिराय ही औ बिमा ला यालमू फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार की रोशनी में जो कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से करे या उसके मुतल्लिक बगैर इल्म के कोई बात कहे, ऐसे शख्स की क्या सजा बयान हुई है? वो गुमराह हो गया, उसने गुनाहें कबीरा किया, वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले, वो काफिर हो गया। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिसबाहुद्दुजा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे अकायद तीसरा चैप्टर कुरान और आसमानी किताबें, इस सिलसिले का ये हमारा पांचवा लेक्चर है। आज हम बात कर रहे हैं सुन्नत का सरचश्मा किताबुल्ला है। हमारा अकीदा है कि कोई कफाना किताबुल्ला है, हमारे लिए कुरान काफ़ी है नहीं कह सकता, और अहादीसो सुन्नत नबवी को जो कुरानी हकायक की तशरीह कुरान के नासिख व मनसूख और ख़ास व आम की फहम से मुतल्लिक हैं, या असूलो फ़रूह दीन के सिलसिले में इस्लाम की तालीमात को बयान करती हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि कुरानी आयात ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके अफ़ालो अकवाल को मुसलमानों के लिए हुज्जत करार दिया है और उन्हें इस्लाम और अहकाम के इस्तंबात का, जहाँ से अहकाम हुक्म अक्स किए जाते हैं, और उन्हें इस्लाम और अहकाम के इस्तंबात का एक असली माखज करार दिया है। अरशाद होता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु हो, और रसूल जो कुछ तुम्हें दे दे इसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु, और जिस चीज़ से उसने तुम्हें रोका उससे रुक जाओ। सूरह हश्र। एक और जगह अरशाद होता है, वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन, ना किसी मोमिन के लिए और ना किसी मोमिना के लिए मुनासिब है, इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलहु अमरन, कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का हुक्म दें, अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, कि उनको अपने इस काम के करने या ना करने का अख्तियार हो। एक और जगह अरशाद होता है, वमन यासिल्लाहा व रसूलहु, और जिस शख्स ने खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी की, फकत जल्ला जलालम मुबीना, वो यकीनन खुलम खुल्ला गुमराही में मुबतला हो चुका। सूरह अहज़ाब। जो लोग सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह नहीं करते, हकीकत में वो कुरान की परवाह नहीं करते। लेकिन ये बात वाज़े है कि सुन्नत पैगंबर का मोतबर ज़राए से साबित होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि जो भी शख्स जो कोई बात आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब करे, इसे बेचूँ चरा कबूल कर लिया जाए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वलकद कुसिबा इला रसूलिल्लाहि अला अहदिही, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी तरफ झूठी बातें मनसूब की गई, हत्ता काम खतीबन फकाला, यहाँ तक कि आपने खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जो शख्स भी जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मनसूब करे, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, इसे जहन्नम में अपने ठिकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नाहजुल बलागा। इसी से मिलती जुलती रवायत सही बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। खुद असमाई कर लेते हैं। सूरह हश्र की आयत, वमा आताकुमुर रसूलु फखज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु, से आप क्या समझे हैं, चंद लफ्ज़ों में मफहूम बयान करें। रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। दूसरा ऑप्शन, जिससे भी रसूल मना करें उससे रुकने का जिक्र है इस आयत में। हुक्म इलाही के साथ साथ हजूर का कौलो फेल भी हुज्जत है और अहकाम के इस्तंबात का असली माखज़ है। चौथा ऑप्शन है, हदीस रसूल के होते हुए कुरान पर अमल की ज़रूरत नहीं। जो ऑप्शन आपके नज़दीक दुरुस्त है उस पर आपने निशान लगाना है। अगला हमारा मौजू है आयमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत। हमारा अकीदा है पैगम्बर अक्रम के हुक्म की रूह से आयमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अहादीस की इताअत भी वाजिब है, क्योंकि एक तो ये कि फरीकैन की मशहूर व मारूफ कुतब अहादीस में अक्सर किताबों में एक मतवातर हदीस बयान हुई है जो इस बात को सरियन बयान करती है। सही तिर्मिज़ी में मज़कूर है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नासो, इन्नी कद तरक तो फी कुम, ए लोगो मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज़ छोड़ रहा हूँ, मा इन अखज तुम बेही लन तजिल्लू, जिससे तुम तमस्सुख रखोगे उसका दामन पकड़ लोगे तो हरगज गुमराह न होगे। किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, वो अल्लाह की किताब और मेरी इतरत यानी अहले बैत हैं। सानियन ये कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम अहादीस पैगंबर अकरम से रवायत की हैं और फरमाया है हम जो कहते हैं वो हमारे आबाओ अजदाद के जरिए पैगंबर अकरम से हम तक पहुंचा है। हाँ, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के मुस्तकबिल और उनकी मुश्किलात को वाज़े तौर पर देख रहे थे, इसलिए आपने कुरान और ऐमा की पैरवी को रहती दुनिया तक उनकी रोज़ अफसूम मुश्किलात का हल करार दिया, रोज़ बरोज़ बढ़ने वाली मुश्किलात का हल बता दिया। क्या इस कदर अहम बामाना और मुस्तनद हदीस को नज़रअंदाज किया जा सकता है और बड़े आराम से उससे चश्मपोशी की जा सकती है? हमारा अकीदा है कि अगर इस बात पर और ज़्यादा तवज्जो दी जाती और आज के मुसलमान अकाए तफसीर फिकी मसाइल में जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उनमें से कई एक मुश्किलात मौजूद न होती। खुद आजमाई कर लेते हैं, सही तिर्मिज़ी में हजूर की हदीस, ए लोगो मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज़ छोड़ रहा हूँ जिससे तमस्सुक रखोगे और हरगज गुमराह ना होगे, वो अल्लाह की किताब और मेरी इतरत यानी अहले बैत हैं। आप जानते हैं कि फरमाने रसूल में मंतूक के साथ साथ असरारुर रमूस भी होते हैं। इस हदीस पर गौर व फिक्र करने के बाद दो असरार की निशानदेही करें। इसमें दो चीज़ों, अल्लाह की किताब और अहले बैत का जिक्र है इस हदीस में। दूसरा ऑप्शन है फरमाने रसूल की रूह से आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस की इताअत भी वाजिब है। तीसरा ऑप्शन इस हदीस में उम्मत के लिए अहम पैगाम है। चौथा ऑप्शन जिस तरह क़यामत तक कुरान बाकी रहेगा इसी तरह अहले बैत में से किसी न किसी फ़र्द का मौजूद होना ज़रूरी है ताकि लोग दोनों से तमस्सुक रख सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह।